भैया, अचानक आई आहाना की आवाज़ सुनकर धृषांत तुरंत पीछे मुड़ा। आहाना उसके कमरे के बाहर खड़ी थी। हाँ अनु, क्या हुआ? हम अंदर आ जाएं भैया? आहाना ने अंदर आने की इजाज़त मांगी। धृषांत ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, आजा गुड़िया। आहाना धीमे कदमों से चलते हुए उसके पास आई और उसके सामने निगाहें झुकाकर खड़ी हो गई। क्या हुआ अनु, कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? उसकी झुकी पलकें, माथे पर पड़ी सिलवटें और तनावपूर्ण चेहरे को देखते हुए धृषांत ने चिंतित स्वर में बड़े ही प्यार से सवाल किया। आहाना ने पलकें उठाकर नम आंखों से उसे देखा और धीमे स्वर में बोली, भैया हमने एक गलती कर दी है। कैसी गलती गुड़िया? धृषांत ने प्यार से उसकी भीगी आंखों को पोंछते हुए सवाल किया। आहाना ने एक बार फिर अपनी पलकें झुका ली और रूंधे स्वर में बोली, भैया आप सबकी परेशानी की वजह हम हैं। हमारे कारण वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी जिसके बाद शायद वो हमसे कभी रिश्ता नहीं जोड़ेंगे और आप सबका इंतजार इंतजार ही रह जाएगा। आहाना की बातें सुनकर धृषांत के माथे पर बल पड़ गए। कुछ गलत होने की आशंका मन में जन्म लेने लगी। धृषांत ने आहाना के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए अपने सामने किया और चिंतित स्वर में बोला, अनु क्या हुआ गुड़िया, तू ऐसे क्यों बोल रही है? किस गलती की बात कर रही है तू? अपने भाई को बता। आहाना ने अपनी भीगी पलकें उठाकर उसे देखा और सुबकते हुए बोली, आपने हमें लड़के से दहेज के बारे में कुछ भी बात करने से मना किया था, पर उस दिन हमने उन्हें साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर वो दहेज लेंगे तो हम उनसे शादी नहीं करेंगे। लालच की जमीन पर अपने किसी नए रिश्ते के बीच नहीं बोएंगे। शायद हमारी उसी बात के कारण अब तक वहां से कोई जवाब नहीं आया है और आगे भी नहीं आएगा, तो आप लोग उम्मीद छोड़ दीजिए, अब वो रिश्ता नहीं जुड़ेगा। आहाना के इस खुलासे ने धृषांत को गहरा सदमा दिया। पहले तो वो शॉक्ड सा उसे देखता रहा, फिर जब उसके कानों में आहाना की सिसकियों की आवाज़ पड़ी तो उसने खुद को संभाला और आहाना को अपने सीने से लगा लिया। कोई बात नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारे कहने के बावजूद हम सब तुम्हें खाली हाथ तो विदा नहीं करते। फिर भी अगर सिर्फ दहेज के कारण वो इस रिश्ते से मुकरते हैं तो अच्छा हुआ जो तुमने पहले ही ये बात कर ली। उनका लालच हमारे सामने आ गया और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। हमें ऐसी जगह तुम्हारा रिश्ता करना ही नहीं जिनके लिए तुम्हारे गुणों से ज्यादा अहमियत तुम्हारे साथ आने वाले दहेज की हो। हमें तुम्हारी शादी करवानी है, पर तुम हम पर बोझ नहीं किसी ऐसे लालची लोगों के बीच तुम्हें भेज दें। फिर मेरी बहन के लिए लड़कों की कोई कमी नहीं। महादेव की कृपा से इतनी प्यारी मासूम सूरत है, हर गुण से परिपूर्ण, इतनी समझदार है। तुम्हारे लिए हम इससे भी अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे और तुम्हें ऐसे घर में भेजेंगे जहाँ तुम्हारे गुणों की कद्र की जाएगी। चलो अब रोना बंद करो, मैं पापा से बात करके कह दूंगा कि हमारे तरफ से इनकार कर दें। अगर उन्हें सीधे से ना करने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो हम ही बात खत्म कर देंगे। धृषांत की आखिरी बात सुनकर एक टीस सी उठी थी मन में। अंदर कुछ टूटता हुआ सा महसूस हुआ। शायद ख्वाबों में उन अधूरे एहसासों और जज्बातों का जो महल उसने बनाया था वो ताश के पत्तों के बने घर जैसे टूट कर बिखर गया और उन अधूरे जज्बातों के कीर्चे दिल में चुप कर दर्द का एहसास करवा रहे थे। कितना रोका था उसने कि जो जिंदगी में शामिल नहीं हो सकता उसे दिल में नहीं बसाना, पर जाने कब वो चुपके से आकर उसके दिल में घर कर गया। उसे एहसास तक नहीं हुआ। शायद उसी पल दिल उसकी तरफ झुक गया था जब वो उसके आगे झुका था। शायद ये अनकहे से एहसास उसी पल अपना वजूद तलाश चुके थे जब अक्षय की नज़रें उस पर ठहरी थीं। जो एक खूबसूरत सा एहसास था जो चंद पलों के लिए उसके हिस्से आया था, ये तकलीफ देह था, पर आहाना ने अपने जज्बातों को मारकर इस हकीकत को स्वीकार कर लिया था। सारा दिन गुजर गया था उनके जवाब के इंतजार में। एक दिन और पहाड़ सा गुजरा था, पर आज दो लोग थे जिन्हें कोई इंतजार नहीं था। एक आहाना, जिसने खुद को समझा लिया था कि यही उसकी नियति है। दूसरा धृषांत, जिसने ये जानने के बाद इस रिश्ते से मुंह मोड़ लिया था कि दहेज के कारण वो लोग बात टाल रहे हैं। वो इंतजार में था कि सही वक्त देख पर जितेंद्र जी से बात करे। शाम का वक्त था, धृषांत ने पल्लवी को कॉल करके बुलवा लिया था और अंतरा और आहाना को उसके साथ शॉपिंग पर भेज दिया था। साथ निशांत भी गया था। बीते दिनों आहाना बहुत गुमसुम और उदासी रहती थी, इसलिए जयंती जी ने भी उन्हें पल्लवी के साथ जाने की इजाज़त दे दी। इस वक्त घर में सिर्फ धृषांत, जितेंद्र जी और जयंती जी थे। ड्राइंग रूम में बैठी जयंती जी रात के लिए सब्जी काट रही थी। जितेंद्र जी के साथ धृषांत न्यूज़ सुन रहा था और साथ ही ये भी सोच रहा था कि कैसे बात की शुरुआत करें। धृषांत ने कुछ देर सोचा, फिर जैसे ही बोलने के लिए उनकी ओर मुड़ा अचानक ही जितेंद्र जी का फ़ोन बज उठा। उन्होंने टेबल पर रखा फ़ोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर अभिजीत जी का नाम चमक रहा था। इतने दिनों में पहली बार सामने से उन्होंने फ़ोन किया था, इसलिए पहले तो जितेंद्र जी कुछ हैरान हुए, फिर उनके मन में उम्मीद की एक किरण जली और उन्होंने तुरंत ही टीवी बंद करते हुए कॉल रिसीव किया। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? अब तबीयत कैसी है आपकी? नमस्कार भाई साहब, महादेव की कृपा से अब हम बिल्कुल ठीक हैं। आप बताइए क्या हाल है वहाँ के? महादेव के आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। आपके वहाँ सब कैसे हैं? जितेंद्र जी ने सहज भाव से मुस्कुराते हुए जवाब दिया और साथ ही सवाल भी पूछ लिया। यहाँ भी सब कुशल मंगल है। दोनों के बीच अभी बस औपचारिक ही बातें हो रही थी। दृशांत और जयंती जी दोनों के आंख कान उन पर टिके थे। जितेंद्र जी अब समझ नहीं सके कि आगे क्या कहें। मन में सवाल था पर पूछने में हिचकिचा रहे थे, पर उनके उस सवाल का जवाब बिना पूछे ही अभिजीत जी ने दे दिया था। सबसे पहले तो हम आपसे माफी चाहते हैं कि आपसे इतने दिन इंतजार करवाया, पर हमारी भी कुछ मजबूरियां थी। अभिजीत जी कुछ शर्मिंदा से लगे, जिसे जितेंद्र जी ने महसूस किया और सहजता से बोले, कोई बात नहीं भाई साहब, हम समझते हैं। आप बताइए कैसे फोन किया आपने। कुछ कुछ अंदाजा तो उन्हें हो गया था, पर फिर भी वो उनसे बात सुनना चाहते थे। अभिजीत जी ने अब मुस्कुराकर जवाब दिया, हमने आज आपको ये खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किया है कि हमें और हमारे परिवार को आपकी बिटिया बहुत पसंद आई। हम आहाना को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। ये रिश्ता हमें मंजूर है और अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम चाहते हैं कि नजदीक का जो भी अच्छा मुहूर्त निकलता है उस पर आप अपने संबंधियों संग हमारे यहाँ पधारें और अक्षय का तिलक करते हुए इस रिश्ते को पक्का कर दें। फिर हम भी अच्छा सा मुहूर्त देखकर अपनी बहू का रोका कर लेंगे। और हम तो सोच रहे थे कि रोके के साथ बच्चों की सगाई भी करवा दें। उसके बाद जब आप कहेंगे हम बारात लेकर आपके द्वारे आ जाएंगे अपनी बहू को लेने। जितेंद्र जी को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस रिश्ते के टूटने की उन्हें पूरी आशंका थी वो रिश्ता टूटते टूटते जुड़ गया। उन्होंने आहाना को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। उनकी बेटी का रिश्ता तय हो गया, वो भी उस वर से जो उन्हें अपनी बेटी के लिए सबसे बेहतर लगा था। अभिजीत जी की बात सुनकर उनकी कितनी बड़ी चिंता खत्म हो गई थी। बीते दिनों से जिस चेहरे पर चिंता और तनाव के भाव नजर आया करते थे, ये खुशखबरी सुनकर उस चेहरे पर सुकून और खुशी के भाव उभर आए और ये खुशी उनके लिए बहुमूल्य थी। आपने ये खुशखबरी सुनाकर हमें धन्य कर दिया। हमारी बेटी नसीबों वाली है, जो महादेव की कृपा से उन्हें इतना अच्छा घर और सुयोग्य वर मिलने जा रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका हमारी बेटी को स्वीकार करने के लिए। आप जब कहेंगे हम तिलक के लिए आ जाएंगे।
आभार तो हमें आपका व्यक्त करना चाहिए भाई साहब, जो अपनी इतनी समझदार, गुणी और प्यारी बिटिया आप हमें सौंपने को राजी हो गए। हमारा बेटा खुशनसीब है जो उन्हें आहाना जैसी जीवन संगिनी मिलने जा रही है और उन्हें अपनी बहू के रूप में पाकर हम भी धन्य हो जाएंगे। इसके लिए हम आपका जितना आभार व्यक्त करें उतना कम है। दृशांत अब लगभग पूरी बात समझ गया था, इसलिए उसके चेहरे पर उलझन के भाव उभर आए थे। उसने जितेंद्र जी को दहेज के बारे में पूछने को कहा और साथ ही फोन भी स्पीकर पर डाल दिया। आहाना की बातें सुनने के बाद उसे लगा था कि अब ये रिश्ता नहीं होगा, पर अब जो हो रहा था उसने उसको उलझन में डाल दिया था। वो अपने शक को जांच रहा था। उसका इशारा समझते हुए जितेंद्र जी ने गंभीरता से सवाल किया, भाई साहब हमें तो रिश्ता पहले ही मंजूर था। अक्षय जी हमें हमारी बिटिया के लिए सुयोग्य वर लगे। अब आपने भी हमारी बिटिया को स्वीकार कर लिया तो लेने देने की बात हो जाती तो अच्छा होता, उस हिसाब से हम आगे का फैसला लेते। जितेंद्र जी ने भूमिका बांधते हुए मुख्य सवाल पूछा और दूसरी तरफ से जवाब बड़ा सरल आया। लेने देने की बात करें तो भाई साहब हम भिक्षुक बनकर आपके द्वारे आएंगे। आप अपने जीवन भर की जमा पूंजी अपनी बिटिया हमें दान कर दीजिएगा। बस इससे ज्यादा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। दहेज में एक रुपया नहीं लेंगे हम आपसे। बस हमें हमारी बहू दे दीजिएगा, हमारे लिए वही बहुमूल्य है। अभिजीत जी का जवाब सुनकर जितेंद्र जी का दिल खुशी से गदगद हो गया। हालांकि वो हैरान भी थे पर उनकी सोच के कायल भी हो गए थे। जयंती जी की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। आहाना के भविष्य की चिंता उन्हें दिन रात सताती थी, पर अब उसका रिश्ता तय होने वाला था, वो भी ऐसे परिवार में जिन्होंने उन बेजान नोटों से ज्यादा अहमियत उनकी बेटी को दिया था, जो उनसे लाखों का दहेज नहीं बस इज्जत से उनकी बेटी मांग रहे थे। इन दोनों से अलग दृशांत बेहद हैरान था। उसे तो लगा था कि वे लालची लोग हैं, इसलिए दहेज न मिलने पर रिश्ता टाल रहे हैं। पर यहाँ न सिर्फ उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कहा, बल्कि उन्होंने तो दहेज में एक रुपया तक लेने से साफ इनकार कर दिया था। मतलब साफ था कि उसने उन्हें गलत समझा। वे लालची नहीं, अच्छे और नेक लोग हैं। उन्हें आहाना के साथ आने वाले दहेज से नहीं, सिर्फ आहाना से मतलब है। दृशांत की हैरानी अब उसकी खुशी में बदल गई थी। अपनी बहन के लिए ऐसा ही परिवार चाहिए था उन्हें। यहाँ सभी खुश थे। जितेंद्र जी आगे के बारे में उनसे बात करने लगे। जयंती जी मन ही मन महादेव को नमन करने लगी। दृशांत तो आहाना के बारे में सोच रहा था कि जब उसे ये सब पता चलेगा तो कितनी खुश होगी वह। ऐसे ही हम सफर की ख्वाहिश थी उसे और महादेव ने उसे उसकी दुआओं और भक्ति के फल के रूप में अक्षय दे दिया था। क्या रिएक्शन होगा आहाना का जब उसे इस बारे में पता चलेगा।